पिंकेश कुमार की आवाज़ में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हेतु अध्याय संप्रभुता। एक राज्य का दूसरे राज्य से, राज्य का अपने नागरिकों से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या संबंध होता है, यह तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसे अन्य समुदाय से पृथक करता है तथा जिसे हम संप्रभुता कहते हैं। गैटल। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जा सकता है। राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। वस्तुतः संप्रभुता के बिना राज्य की अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची सॉवरनिटी लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है, जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। शब्द की व्युत्पत्ति द्वारा शब्द संप्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान समय में भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का अर्थ होते हुए भी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं और ब्राइस के शब्दों में कहा जाता है, संप्रभुता का प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। संप्रभुता के संबंध में व्यक्त किए गए प्रमुख विचार अगर प्रकार हैं। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या जीन बोदन के द्वारा की गई, जिनके अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। ग्रेसियस। संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। डिगविट। संप्रभुता राज्य की आदेश देने की शक्ति होती है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की यह इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके आधार पर राज्य के निश्चित क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दिए जा सकते हैं। वर्गेस। वह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उसके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। विलोबी। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है। यद्यपि इन परिभाषाओं में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग है, लेकिन सभी विद्वानों का आशय है कि संप्रभुता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति से है, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसका कारण है कि संप्रभुता के दो पक्ष आंतरिक और बाह्य संप्रभुता होते हैं, परंतु उपयुक्त संप्रभुता में केवल आंतरिक पक्षों पर जोर दिया गया है। आंतरिक प्रभुता। आंतरिक प्रभुता का तात्पर्य है राज व्यक्तियों या व्यक्ति समुदाय से उच्चतर होता है और अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है और शक्ति के आधार पर आज्ञाओं को मनवा सकता है। व्यक्ति अथवा समुदाय द्वारा इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। डॉक्टर गार्नर कहते हैं, संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत या सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन होते हैं। बाहरी संप्रभुता का तात्पर्य किसी भी बाहरी सत्ता से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण से राज्य की स्वतंत्रता का होता है। एक राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कि विदेशों से वह कैसा संबंध स्थापित करे, कानूनी दृष्टि से वह मैत्री, युद्ध, तटस्थता या किसी भी मार्ग को अपना सकता है। लास्की कहते हैं, आधुनिक राज्य प्रभुता संपन्न राज्य होता है, अतः वह अन्य राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। वह उसके संपन्न संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित बिना हुआ ही व्यक्त कर सकता है। संप्रभुता के दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए संप्रभुता की एक संतुलित परिभाषा निम्न रूप से की जा सकती है। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। संप्रभुता के निम्नांकित लक्षण हैं। पहला, निरंकुशता। संप्रभुता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है और जैसा कि संप्रभुता के इस अर्थ से ही स्पष्ट है, वह सर्वोच्च शक्ति निरपेक्ष एवं निरंकुश होती है। संप्रभुता आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्र में ही निरंकुश एवं सर्वोच्च होती है। ऑस्टिन के शब्दों में कह सकते हैं, संप्रभुता अन्य सभी से आदर्श पालन करने की स्थिति में होता है, किंतु स्वयं किसी के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता। दूसरा, मौलिकता। मौलिकता का अर्थ राज्य की संप्रभुता मौलिक है और किसी सत्ता के द्वारा प्रदत्त नहीं। यदि मान लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त होती है, तो यह मानना पड़ेगा कि देने वाली सत्ता राज्य की प्रभुता से भी ऊपर होगी और उसकी इच्छा के द्वारा वापस लिया जा सकता है, परंतु संप्रभुता से उच्च किसी भी अन्य सत्ता का अस्तित्व संभव नहीं है। तीसरा, सर्वव्यापकता। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण होता है और कोई भी व्यक्ति उसकी प्रभुत्व संपन्नता से बाहर होने का दावा नहीं कर सकता है। किसी को विशेषाधिकार वर्ग है कोई, तो उनकी इच्छा विशेषाधिकारिता राज्य की इच्छा पर निर्भर करती है। संप्रभुता सर्वव्यापकता का केवल एक अपवाद कहा जा सकता है, राज्येतर संप्रभुता का सिद्धांत। इसके अनुसार एक देश के अंतर्गत स्थित दूतावास उस देश की संपत्ति समझा जाता है जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है, और दूतावास के क्षेत्र में उसी देश का कानून लागू होता है। परंतु कोई राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए इन विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं को वापस ले सकता है। चौथा, स्थायित्व। अनेक बार संप्रभुता को एक विशेष सरकार का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, लेकिन यह भ्रमपूर्ण है। संप्रभुता अस्थायी होती है, और संप्रभुता का अंत करना राज्य को समाप्त करना है। ब्रिटिश संविधान में राजा मृत है और राजा चिरायु हो, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग कहावत है, जिसके अनुसार सरकार और संप्रभुता को भेद स्पष्ट करती है कि संप्रभुता एक ऐसी संस्था के रूप में होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है। यदि किसी देश को कोई देश विजय कर लेती है तो उस देश की संप्रभुता का अंत नहीं होता, वरन उसकी संप्रभुता उस जीतने वाले देश के हाथों में चली जाती है। गार्नर कहते हैं, अस्थायित्व से यह आशय है कि जब तक राज्य कायम रहता है तब तक संप्रभुता कायम रहती है। प्रभुत्वधारी की मृत्यु अथवा कालीन पदच्युति तथा राज्य के पुनः संगठन के कारण संप्रभुता का नाश नहीं होता। पांचवा, अपृथकरणीयता। संप्रभुता राजा से अपृथकरणीय होती है, अर्थात राजा राज्य स्वयं को नष्ट के बिना प्रभुता का त्याग नहीं कर सकता है। प्राय ऐसा भ्रम हो जाता है कि किसी राज्य के खंड के पृथक होने से अथवा कोई एक भाग किसी अन्य द्वारा जीत लिए जाने से उस खंड अथवा भाग से संबंधित प्रभुसत्ता उस राज्य से पृथक हो जाती है, परंतु वास्तविकता में इस प्रभुता पृथक नहीं होती, वरन संप्रभुता का हस्तांतरण होता है। गार्नर कहते हैं, संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह उसे दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। लाइबर इसे अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं, जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना मनुष्य अपने जीवन तथा व्यक्तित्व को अथवा वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। रूसो कहता है, संप्रभुता में समान इच्छा का अनुष्ठान होने के कारण उसे का कभी विच्छेद नहीं किया जा सकता, शक्ति हस्तांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं। छठा, अनन्यता। इसका अर्थ है कि केवल एक राज्य के अंतर्गत एक ही प्रभुसत्ता हो सकती है जो जनता को वैध रूप से आज्ञा पालन का आदेश दे सकती है। अविभाज्यता। संप्रभुता अविभाज्य होती है, उसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना है। कालहन कहते हैं, संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है, जिस प्रकार हम एक आधे वर्ग अथवा एक आधे त्रिभुज की कल्पना नहीं की सकते हैं, उसी प्रकार आधी या तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। रूसो कहते हैं, प्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। गैटर कहता है, विभाजित प्रभुता अपने आप में विरोधाभास है, परंतु इसमें अधिकांश विचारक सहमत नहीं है। बहुलवादी संप्रभुता को राज्य और अन्य समुदायों में विभाजित मानते हैं। इसके अतिरिक्त लॉवेल, ब्राइस, फ्रीमैन आदि लेखक का विचार है कि संघ और राज्य में संघात्मक शासनों में प्रभुसत्ता विभाजित होती है। संघात्मक आदर्श की पूर्णता के लिए प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण विभाजन अनिवार्य है, परंतु गैटल कहते हैं, संघीय शासन प्रणाली में संप्रभुता का विभाजन नहीं होता जो कि समस्त राज्य में निहित होती है, परंतु इसकी अनेक शक्तियों का विभाजन होता है जो कि वैधानिक रीति से शासन के विविध अंगों में विभक्त होती है। संप्रभुता के विभिन्न रूप। संप्रभुता शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। इस संबंध में भ्रम को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख संप्रभुताएं हैं। एक होती है औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, नॉमिनल एवं रियल सॉवरेनिटी। औपचारिक या नाम मात्र की संप्रभुता का तात्पर्य एक व्यक्ति या ऐसी इकाई में है जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति हो, परंतु व्यवहार में इसके द्वारा अपने विवेक के आधार पर उपयोग न किया जा सके। इंग्लैंड का सम्राट तथा भारत का राष्ट्रपति इस औपचारिक संप्रभु का उदाहरण है। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड का सम्राट ही संप्रभु है, लेकिन वास्तविक संप्रभु पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल है जो व्यवहार में सम्राट की संप्रभुता का उपयोग करता है। औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता का भेद संस्थात्मक व्यवस्था में ही देखा जाता है। दूसरा, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। एक राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण करने तथा पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु कहते हैं, और वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। यह धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धांतों, जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सकते हैं। गार्नर कहते हैं, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेश को वैध रूप से पूरा कर सके, वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांत तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। डाइसी लिखते हैं, वैध संप्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या विधि से मर्यादित नहीं होती। इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट, किंग इन पार्लियामेंट, को इसी प्रकार एक वैधानिक संप्रभुता कहा जाता है। डाइसी इंग्लैंड के विधि संपूर्ण संप्रभुत्व के बारे में लिखते हैं कि संसद कानून की दृष्टि से इतनी सर्वशक्ति संपन्न है कि एक बच्चे की पूरी उम्र का मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को राजद्रोही या अवैध संतान को वैध घोषित कर सकती है, अथवा उचित समझे तो किसी व्यक्ति को स्वयं से संबंधित मामले में भी न्यायाधीश बना सकती है। कानूनी संप्रभुता की निम्न विशेषताएं हैं। ए यह निश्चित होती है अथवा न्यायालय इसे स्वीकार करता है। बी यह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है। तीसरा यह निश्चित रूप से संगठित स्पष्ट और विधि द्वारा मान्य होती है। चौथा वैधानिक दृष्टि से राज्य की इच्छा की घोषणा केवल यही करती है। पांचवा व्यक्तियों को सभी अधिकार कानूनी संप्रभुता से ही प्राप्त होते हैं अतः स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को इस संप्रभुता के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। और छठा यह असीमित और सर्वोच्च होती है। राजनीतिक संप्रभुता प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या शासन व्यवस्था वाले देशों में तो वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन प्रतिनिधियात्मक शासन में राजनीतिक और वैधानिक संप्रभुता में अंतर होता है। डायसी के शब्दों में जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उनके पीछे एक दूसरा संप्रभु होता है। इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी इच्छा को अंतिम रूप से राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक संप्रभु है। गार्नर कहते हैं वैध संप्रभुता का पीछे एक दूसरी प्रभु संपन्नता होती है जिसे वैधानिक रूप से अज्ञात एवं असंगठित है और जिसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह राज्य की इच्छा को वैध आदेश के रूप में व्यक्त कर सके, परंतु फिर भी ऐसी है जिसके सम्मुख संप्रभुता को नतमस्तक होना पड़ता है वह राजनीतिक संप्रभुता। कार्लाइल के शब्दों में पार्लियामेंट को उस राजनीतिक संप्रभुता के प्रति यह कहना होता है कि मैं उसका नेता हूं और मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक संप्रभुता कानून द्वारा ज्ञात नहीं होती है, यह तो असंगठित और अनिश्चित तो होती है। संकीर्ण दृष्टिकोण से एक देश के निर्वाचकों को राजनीतिक संप्रभु कहा जा सकता है क्योंकि वही वैधानिक संप्रभु का निर्णय करते हैं, लेकिन दलीय राजनीति लोकमत और प्रचार के साधनों का भी वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रहता है। इसलिए गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है राजनीतिक संप्रभु एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग होता है जो कानूनी संप्रभु के पीछे निहित होते हैं। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के बीच संबंध प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय शासन में वैध और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता है और वे क्रियात्मक रूप से मिल जाती हैं, लेकिन विधि निर्माण में जनता का प्रत्यक्ष हाथ होता है किंतु अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि विधि निर्माता होते हैं। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों से निर्मित व्यवस्थापिका वैधानिक संप्रभु और उस वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रखने वाला निर्वाचक राजनीतिक संप्रभु कहलाते हैं। प्रोफेसर ऋचि ठीक ही कहते हैं श्रेष्ठ शासन की समस्या अधिकांश में वैधानिक संप्रभु तथा राजनीतिक संप्रभु के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करने की समस्या है। एक श्रेष्ठ व्यवस्था के अंतर्गत वैधानिक प्रभुसत्ता को राजनीतिक प्रभुसत्ता की इच्छा के दर्पण के रूप में कार्य करना चाहिए। वैध प्रभुता या सत्ता राजनीतिक प्रभुता या सत्ता की इच्छा के विरुद्ध आचरण करने का साहस नहीं कर सकती। यदि ऐसा करती है तो वैध सत्यता राजनीतिक असत्यता में परिणत हो जाती है। लोक प्रभुता का विचार आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। लोक प्रभुता के विचार को मध्य युग में मार्गिस्लियो ऑफ पेडुआ और विलियम ऑफ ओकम के विचारों को द्वारा जन्म दिया गया, परंतु इसका प्रतिपादक रूसो है और समान इच्छा को ही लोक प्रभुता मानते हैं। रूसो की समान इच्छा से तात्पर्य सबकी इच्छा के उस भाग से था जिसमें समान हित निहित हो। आधुनिक युग में लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार और पर्याय बन चुकी है, परंतु लोक प्रभुता के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते कि जनता से उनका क्या तात्पर्य है। एक अर्थ में नवजात शिशु लेकर मृतप्राय व्यक्ति तक निम्नतम अपराधी से लेकर आदर्शतम व्यक्तियों का बोध होता है जिसमें राजनीतिक चेतना हो। इस प्रकार लोक प्रभुता से केवल मताधिकार प्राप्त जनसंख्या वर्ग का बोध हो सकता है। इस अर्थ में राजनीतिक प्रभुता तथा लोक प्रभुता के बीच अंतर नहीं रह जाता। इसे गार्नर लिखते हैं लोकप्रिय संप्रभुता अर्थ निर्वाचक समूह की जनसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता और यह उन्हीं देशों में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार की प्रणाली प्रचलित करने के लिए वैध रूप से स्थापित मार्गों द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त करते हैं। विधिता और यथार्थ संप्रभु डी जूरो और डी फैक्टो सॉवरेनिटी। एक देश में संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय को शासन करने का अधिकार प्राप्त किया जाता है उसे विधिता संप्रभु कहते हैं और व्यवहार के अंतर्गत या वास्तव में जिस व्यक्ति या समुदाय द्वारा शासन करता है उसे जनता से जो व्यक्ति समुदाय वास्तव में अपनी आज्ञाओं का पालन करता है उसे यथार्थ संप्रभु कहते हैं। ब्राइस के शब्दों में यथार्थ संप्रभु वह है जिनकी आज्ञाओं और आदेशों का वास्तव में पालन होता हो चाहे उनकी प्रभुता का आधार कानूनी हो या ना हो। विधिता संप्रभु और यथार्थ संप्रभु अधिक समय तक एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। उदाहरण के लिए 1917 में रूस में जो सरकार स्थापित की थी वह यथार्थ संप्रभु ही थी। 1958 में मार्शल आयोग ने क्रांति के आधार पर पाकिस्तान की शासन शक्ति अपने हाथ में ली थी। लगभग 10 वर्षों तक वे पाकिस्तान के सर्वोच्च सरबा बने रहे, किंतु 1968 में सेना की सहायता से याहिया खान ने मार्शल आयोग को पदच्युत कर शासन की शक्ति पर आधारित कर लिया। 11 सितंबर को चिली में राष्ट्रपति सेल्वेदोर आयोद्रे की सरकार के विरुद्ध सफल विद्रोह करके जनरल पोनिचेत की सैनिक सरकार ने चिली के यथार्थ संप्रभु की स्थिति प्राप्त कर ली और बाद में जनता ने परिवर्तन का स्वागत करते हुए नवीन सरकार को अपना समर्थन प्रदान कर दिया और इस प्रकार वे विधिक संप्रभु ही हो गए। संप्रभुता का अधिवास। संप्रभुता के अधिवास की खोज राजनीति विज्ञान का एक अधिक महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है। संप्रभुता के अधिवास का तात्पर्य है कि संप्रभुता राज्य में कहाँ रहती है, अर्थात कौन व्यक्ति या व्यक्ति समूह राज्य की इच्छा को व्यक्त करते हैं। इसमें प्रमुख विचारक निम्न हैं। पहला, कुछ 19वीं शताब्दी तक राजतात्मक तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में विचार प्रचलित था कि संप्रभुता राज्य में निहित होती है, और फ्रांस के शासक लुई XIV कहता था, मैं ही राज्य और मैं ही शासक हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। परंतु आधुनिक लोकतंत्रीय समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, अर्थात लोकतंत्रीय समाज में संप्रभुता का अधिवास राजा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा विचार रोमन विद्वान सिसरो द्वारा व्यक्त किया गया कि संप्रभुता जनता में निहित होती है, परंतु उस समय प्रवृत्तियों के विरुद्ध होने के कारण यह स्वीकार नहीं हुआ। वर्तमान समय में यह विचार अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु व्यवहार में इस सिद्धांत को में अनेक कठिनाइयां हैं। पहला, यह जन समुदाय को संप्रभु नहीं माना सकता, क्योंकि जन समुदाय असंगठित होता है लेकिन संप्रभुता आवश्यक रूप से संगठित होते हैं और उनमें एकता अनिवार्य है। द्वितीय, निर्वाचकों को भी संप्रभु नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनकी संख्या संपूर्ण जनता का एक बहुत ही छोटा भाग होती है। इसके अतिरिक्त जनता के मत या जनमत को राजनीतिक संप्रभुता माना जा सकता है, वैधानिक संप्रभुता नहीं। तीसरा, संप्रभुता संविधान निर्माता सभा में है। 16वीं सदी में कुछ प्रतिभाशाली न्याय विशारदों ने प्रतिपादन किया कि संप्रभुता सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था में ही है, और इसके अनुसार निम्नलिखित बातें कही जाती हैं कि संप्रभुता का एक प्रमुख लक्षण उसका स्थायित्व है, परंतु सभी राज्यों में संविधान निर्मात्री सभा स्थायी नहीं होती। दूसरा, संविधान निर्मात्री सभा को वैधानिक संप्रभु कह सकते हैं, राजनीतिक संप्रभु नहीं। व्यवहारिक वैधानिक संप्रभु का भी अपना महत्व है, लेकिन वैधानिक दृष्टिकोण से अंतिम रूप से राजनीतिक संप्रभु ही सर्वोच्च होता है। चौथा, संप्रभुता का अधिवास विधानमंडल में है। आधुनिक युग के कुछ विद्वान का मत है कि संप्रभुता का अधिवास राज्य के विधानमंडल में है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका तो विधानमंडल की इच्छा का ही पालन करती है, लेकिन इसके विरुद्ध भी कुछ तर्क हैं। यह सत्य है कि विधानमंडल ही कानूनों का एकमात्र निर्माता होता है। व्यवहार में विधानमंडल की शक्तियां जनमत, निर्वाचन, रीति रिवाज, धार्मिक नियम, संविधान अनेक बातों से सीमित होती है। दूसरा, संघात्मक रूप राज्यों में जहां पर संविधान आवश्यक रूप से लिखित और कठोर होता है, यह बात लागू नहीं होती। संघात्मक राज्यों में शक्ति विभाजन के कारण विधानमंडल की शक्तियां राज्य के अंगों और अधिकारों से सीमित होती है। पांचवा, संप्रभुता का निर्माण निवास राज्य के विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं के योग में होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन संप्रभुता उन सभी संस्थाओं में योग होती निवास करती है जो विधि निर्माण में कार्य करते हैं। गैटल इन संस्थाओं का विभाजन निम्न प्रकार करते हैं। एक, प्रतिनिधियात्मक व्यवस्थाएं जैसे राष्ट्रीय, राजकीय और स्थानीय। दूसरा, न्यायालय जब वे कानून का निर्माण करते हैं। तीसरा, कार्यपालिका जब वे अध्यादेश जारी करते हैं। चौथा, निर्वाचक मंडल जब वे लोक निर्णय और आरंभक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। पांचवा, सम्मेलन व संविधान सभाएं जब वे संविधान परिवर्तन या नवीन संविधान के निर्माण का कार्य करते हैं। गैटिल का विचार उपयुक्त चारों ही सिद्धांतों का समन्वय है। इसके अंतर्गत इस एक प्रकार से स्वयं राज्य को संप्रभु माना गया और सरकार के विभिन्न अंग व्यवहार में इस संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत लोक प्रभुता, वैधानिक प्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता सभी को उचित स्थान प्रदान कर दिया गया। अतः यह विचार ही सर्वमान्य है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत या संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 इंग्लैंड का विधि शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन हाफ्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था, और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतम को दिया गया आदेश ही कानून होता है, और अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है, तथा उस समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी कथन के विश्लेषण से संप्रभुता की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य होता है। दूसरा, संप्रभुता किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। संप्रभुता समान इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैवी इच्छा, जनमत या मतदान जैसी भावात्मक प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती। यह तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य, एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभुत्व न हो। तीसरा, इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है, कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। चौथा निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है, यदा कदा की बात नहीं। ऑस्टिन का विचार है कि निश्चित प्रभु के बिना आज्ञाकारिता स्थिर निरंतर तथा अप्रहित प्रतिहत होनी चाहिए। पांचवा प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। छठा सर्वोच्च प्रभुसत्ता की शक्ति अखंडित होती है या एक ही इकाई है और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं होता। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना। ऑस्टिन एक वकील था और उसने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या केवल वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही की। ऑस्टिन द्वारा व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान न दिए जाने के कारण सर हेनरी मेन, ब्राइस, ए आर लॉर्ड, ब्लंटसली, जेम्स स्टीफन आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना या एकलवादी सिद्धांत की आलोचना निम्न आधार पर किया जाता है। पहला, समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। सर हेनरी मेन कहते हैं अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशन में, इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते जिस प्रकार के व्यक्ति की, संप्रभु व्यक्ति की व्याख्या ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में की है। लेखक भी इस कथन की पुष्टि करते हुए कहा है, प्रभुत्व राज तथा कानून का विचार जिस प्रकार से ऑस्टिन ने किया है यह पूर्वी जनजातियों पर लागू होता है। जॉन चिपमैन गिरे के शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज के वास्तविक शक्तियों को खोजा नहीं जा सकता है। दूसरा, यह लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। ऑस्टिन कहता है कि प्रभुत्व शक्ति लोकमत या जनता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह वैधानिक प्रभु को मानने का परिणाम होता है कि लोक प्रभुता तथा राजनीतिक प्रभुता दो प्रकार की प्रभुसत्ता को अस्वीकृत करनी होगी। वर्तमान समय के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना संभव नहीं है। मैकावर अपनी पुस्तक आधुनिक राज्य में लिखता है, ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर ही लागू होती है क्योंकि उस विचारधारा के विषय वस्तु स्वामी और दास के संबंधों की व्याख्या मात्र है। तीसरा, कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं होता है। भारतीय विद्वान कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं, धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम और प्रथाएं राज्य तथा राजा के आदेश के कानून के स्रोत होते हैं। राजा का आदेश केवल कानून नहीं होता है, वास्तव में वो व्यवहार में चल रही विभिन्न प्रथाओं, परंपराओं और नैतिक आदर्शों को विधिक रूप दे देता है। मैकावर कहते हैं, राज को किसी रीति रिवाज का विनाश करने या बदलने की तनिक भी शक्ति नहीं होती। इतना अवश्य है कि परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर वह अप्रत्यक्ष रूप से अप्रभावित करता है। क्लार्क, सिजबिक, लॉवेल, विल्सन, टीएच ग्रीन, लाइटवुड, मैरियम, विलोभी आदि ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। कई विद्वानों ने यहाँ तक तो कहा है कि राज्य अपने कानून द्वारा शराब और वेश्यावृत्ति को उचित नहीं ठहरा सकता है, अतः राजा की आज्ञा कानून नहीं होती। डिगविट ने यहाँ तक कहा है, राज कानून का निर्माण नहीं करता, वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं। कानून केवल सामाजिक आवश्यकता का प्रकाशन होता है। चौथा, ऑस्टिन का यह कथन असत्य है कि संप्रभुता अभ्याज होती है। ऑस्टिन संप्रभुता को किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित मानता है, परंतु कुछ विद्वान संघात्मक राज्यों में संप्रभुता के को विभाजित मानते हैं कि संप्रभुता राज्य, केंद्र और स्थानीय सरकारों में विभाज होती है। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान सभा शाश्वत नहीं होती, जबकि आवश्यकता संप्रभुता का मूल लक्षण है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संप्रभुता विभाजित होती है। पांचवा, शक्ति को अधिक महत्व। ऑस्टिन अपने सिद्धांत में शक्ति को अधिक महत्व देता है और वह अधिकांश जनता कानूनों का पालन दंड के भय के कारण करवाने को बोलता है। इसी प्रकार हांसा कहते हैं कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है और उसके द्वारा स्थापित राज्य एक पुलिस राज्य ही हो सकता है, किंतु वास्तविकता यह है कि व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन दंड और भय के कारण नहीं वरन अपनी स्वाभाविक इच्छा के द्वारा करता है, क्योंकि इसमें जनता का ही कल्याण निहित होता है। छठा, संप्रभुता असीमित नहीं है। ऑस्टिन अपने सिद्धांत में संप्रभुता को प्रथम लक्षण उसकी असीमितता तथा निरंकुशता करता है, परंतु ब्रंसली लिखते हैं, राज अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता क्योंकि बाहरी मामले में वह अन्य राज्यों के अधिकार से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है। आलोचक के अनुसार राज्य की प्रभुसत्ता पर निम्न प्रतिबंध होते हैं। क, नैतिक प्रतिबंध। सामाजिक क्षेत्र में नैतिक नियमों से राज्य की प्रभुसत्ता सीमित होती है क्योंकि राज्य अपने आदेश द्वारा चोरी या वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्य को नैतिक नहीं बना सकते। दूसरा, रीति रिवाज तथा परंपराएं। रीति रिवाज और परंपराएं राज्य की कानूनी शक्ति पर प्रतिबंध होता है। परंपराओं का राष्ट्रीय जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है और कोई भी संप्रभु अपने अस्तित्व में खतरे को डाले बिना सहसा इन परंपराओं को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। सन हेनीमैन अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में लिखता है, पंजाब का निरंकुश शासक रंजीत सिंह भी ऐसे कानून नहीं लागू करता था जो समाज के प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो। और गौ धर्म, भूतकाल में लगभग सभी राज्यों और वर्तमान समय में कुछ राज्यों में धर्म संप्रभुता की शक्ति पर प्रतिबंध है। बहुत समय तक यूरोप के आधुनिक राज्यों में राजाभिषेक उस समय तक अवैध माना जाता था जब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोम के पोप की स्वीकृति नहीं हो। वर्तमान समय में भी पाकिस्तान, ईरान जैसे अधिकांश राज्यों में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभुता की मनमानी आज्ञा देने की शक्ति मानवता के हित से मेल नहीं खाती है। विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व जनमत, अंतर्राष्ट्रीय नियम इत्यादि संप्रभु राज्य की संप्रभुता पर प्रतिबंध होते हैं। अन्य समुदाय भी राज्य की संप्रभुता को सीमित करते हैं। राज्य के जीवन में विभिन्न समुदाय व्यक्तियों को जीवन और विकास में अनेक प्रकार की भूमिकाएं अदा करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार मानव निर्मित या ऐच्छिक समुदाय भी राज्य की शक्ति पर प्रतिबद्ध है। सातवां, प्रभुत्व की धारणा घातक है। आंतरिक क्षेत्र में यदि सर्वोच्च सत्ता की धारणा को स्वीकार भी कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान समय में जब अणु और हाइड्रोजन जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण हो चुका है तो संपूर्ण मानवता से संबंधित प्रश्नों को किसी एक राज्य की छाप पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए नॉर्मन एंजल ने अपनी पुस्तक अनसीन एसेसिंस में राज्य प्रभुत्व को प्रमुख हथियारों में माना है। लास्की ठीक ही कहता है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानवीय सुख समृद्धि के लिए घातक है। ऑस्टिन के सिद्धांत या एकल संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का महत्व। यद्यपि ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश आलोचनाएं ऑस्टिन के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से न समझने और इनमें से भ्रांति के कारण की गई हैं। ऑस्टिन के उस सिद्धांत का प्रतिपादन वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर किया और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वैधानिक दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धांत सही है। यह सिद्धांत निस्तांत स्पष्ट और तर्कसंगत है और उसके द्वारा किए गए सिद्धांत के इस विवेचन से प्रभुता के लौकिक और राजनीतिक रूप की अनिश्चितता निश्चितता में ढल जाती है। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। संप्रभुता की विवेचना करते हुए बोना, हॉब्स, हीगल, ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया, जिसका तात्पर्य है प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है। सभी व्यक्ति और संप्रभुता समुदाय उसके अधीन होते हैं और यह सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। परंतु संप्रभुता की अद्वैतवादिता की इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है किंतु राज्य की प्रभुसत्ता का अंत करना श्रेयस्कर समझती है। बहुलवादियां कहते हैं व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की सदस्यता स्वीकार नहीं करता वरन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सांप्रदायिक समुदायों का सदस्य बनता है। विद्वान हैसियों के अनुसार बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है वरन विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनियां हैं और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। लिंडसे लिखते हैं यदि हम तथ्यों का अवलोकन करेंगे तो यह स्पष्ट है कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का अंत हो चुका है। बारकर कहते हैं कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। लास्की के शब्दों में समाज के ढांचे को पूर्ण रूप से होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। गैटिल कहते हैं बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक एवं प्राकृतिक मानते हैं। उनका विचार है कि वे समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसा कि राज्य। वे इस बात को भी नहीं मानते कि राज्य अपनी शक्ति के कारण कुछ सर्वोच्च अधिकार रख सकता है। वे उन सभी समुदायों के समान अधिकारों में विश्वास रखते हैं जो अपने सदस्यों को एक सूत्र में प्रयोग कर उनके लिए महान कार्य करते हैं। अतः प्रभुता न केवल राज्य की धरोहर है अपितु सभी समुदाय उसका उपभोग करते हैं। राज्य अविभाज्य है, सर्वोच्च और असीम शक्ति संबंध नहीं है। उनका सिद्धांत सर्वोच्च सत्ता का दबाव आज भी जटिल दुनिया के वास्तविक बातों के अनुरूप नहीं है। बहुलवाद के सिद्धांत में सहायक तत्व 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा प्रभुसत्ता के अनियंत्रित रूप को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन प्रभुत्ता संपत्ति उनकी यह मान्यता 20वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल न थी। अतः अनियंत्रित प्रभुसत्ता का सिद्धांत एक अव्यवहारिक तथा मृत सिद्धांत बन गया और उसके आधार पर जीवन के बहुमूल्य की आवश्यकताओं पर आधारित बहुलवादी सिद्धांत का जन्म हुआ जिसको निम्न तत्वों से सहायता मिली। पहला, हेगलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया। आदर्शवादी विचारधारा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाते हुए हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा के नाम से संबोधित किया और राज्य की निरंकुश तथा असीमित प्रभुसत्ता का केंद्र बताया। अतः बहुलवाद प्रभुसत्ता को असीमित न मानकर सीमित मानता है और राज्य के अन्य समुदायों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। अतः सरलता से कहते हैं कि बहुलवाद के विकास में आदर्शवाद के विरोध का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, राज्य की अयोग्यता। वर्तमान समय में राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और केंद्रीकरण की अधिकाधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने का प्रयत्न राज्य की अयोग्यता में परिणत होता है। प्रोफेसर वार्ड कहते हैं, इससे केंद्र में पक्षाघात या लकवा तथा दूरवर्ती सिरों पर रक्तहीनता पांडु रोग हो जाता है। बहुलवादी विकेंद्रीय राज्य के अपने सिद्धांत के आधार पर वर्तमान राज्य की त्रुटि को दूर करना चाहते हैं। तीसरा, मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव। बहुलवाद के विकास में जर्मन लेखक गियर्क तथा ब्रिटिश लेखक मैटलैंड और फिगिस जैसे विद्वानों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने लोगों को उस मध्यकालीन समाज की ओर आकृष्ट किया जिसमें राजशक्ति एक स्थान पर केंद्रित नहीं थी और समाज में आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इसी प्रकार वर्तमान समय में सांस्कृतिक आर्थिक आदि समुदायों की स्थिति है, अतः इन समुदायों को राज्य के समकक्ष स्वीकार करते हुए इसका स्वरूप संघात्मक होना चाहिए। चौथा, लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से संतोष। और शीघ्र ही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से संतोष उत्पन्न होने के कारण श्रेणी समाजवादी और संघवादी विचारकों द्वारा व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की मांग की गई। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सभी प्रतिपादकों में जीडीएच कोल प्रमुख रूप से हैं, जो राज्य का उग्र विरोध करने वाले तथा समुदाय की तुलना में राज्य को गौण महत्व करने वाले थे। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय विचारों का क्रमिक विकास। पिछली सदियों में राष्ट्रीयता का विचार प्रमुख रहा है, लेकिन वर्तमान समय अंतर्राष्ट्रीयता का युग कहा जा सकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण बहुलवादी विचारों को प्रोत्साहन मिलता है और संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मानवता के हित में देखते हुए राज्य की प्रभुसत्ता को सीमित करना जरूरी हो जाता है। छठा, विधि शास्त्रीय तत्वों को मत। आधुनिक काल में राज्य विधि राज्य का आदेश मात्र नहीं है, वरन उसके ऊपर एक वस्तु है। अतः निर्विदा रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य की प्रभुसत्ता अनन्य और सर्वोच्च नहीं है। कानून राज्य के ऊपर की वस्तु है, अतः इससे प्रभुता के एकत्ववादी धारणा को धक्का लगा और बहुलवादी विचारधारा का प्रभाव हुआ। तथा श्रमिक वर्गों का विकास। वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था पतनोन्मुख है और उसके स्थान पर समाजवाद या समवादी व्यवस्था लोकप्रिय होती है। इन समवादी विचारधाराओं के आधार पर ऐसे श्रमिक गठन का हो रहा है जो पूंजीवादियों और आर्थिक शक्ति का विरोध करते हैं। श्रमिक वर्गों के इस बढ़ते हुए महत्व के कारण ही संप्रभुता के एकत्ववादी विचारधारा का पतन और बहुलवादी विचारधारा का प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रमुख बहुलवादी विचारकों में गियर्क, मैटलैंड, फिगिस, डिकविट, क्रैप, पॉल वंकर, एडी लिंडले, डरखैम, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बर्कर, जीडीएच कोल और हेडराल लास्की हैं। हालांकि प्रभुसत्ता पर बहुलवादी निम्न रूप से आक्षेप करते हैं। पहली, बहुलवादियों के अनुसार वर्तमान समय में राज्य की स्थिति इस प्रकार है कि अकेला राज मानवीय जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ है। व्यक्ति अपने विभिन्न जीवन के विभिन्न पक्ष के विकास हेतु सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अनेक प्रकार के समुदाय का सदस्य बनता है। और अब लास्की कहते हैं, आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संज्ञा होना चाहिए। कोल के शब्दों में, सामूहिक रूप से इन सभी दृष्टिकोण के राज्य के अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुलवादी इस बात के साक्षी हैं कि ऑस्टिन के पूर्ण संभूत राज्य की सत्ता कभी नहीं रही। प्राचीन काल में यूनान अथवा भारत में इस प्रकार का कोई राज्य नहीं था। वे प्रभुसत्ता के विचार का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राज्यों के विकास के साथ हुआ है। राजाओं के दैवीय अधिकार सिद्धांत से उत्पन्न होने वाली निरंकुशता शासन का ही परिणाम है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। तीसरा, व्यक्ति के विकास के आधार पर। लास्की कहते हैं, मैं केवल उसी राज्य के प्रति राजभक्ति और निष्ठा रखता हूं और उसी के आदेश का पालन करता हूं जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है और हमारा प्रत्येक प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। राज व्यक्ति की प्रगति तथा आत्मसंतुष्टि का साधन मात्र है और व्यक्ति के विकास तथा संतुष्ट बहुमुखी में राज्य को प्रत्यक्ष भूमिका निभानी चाहिए। चौथा, लोकतंत्र के आधार पर। सच्ची लोकतंत्र की स्थापना प्रभुता संपन्न राज्य में नहीं वरन बहुवादी व्यवस्था में ही संपन्न है। सच्चा लोकतंत्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है और इसका अभिप्राय है व्यक्ति द्वारा शासन के एक सभी कालों में भाग लेना, जो कि केवल बहुदलवादी व्यवस्था में ही संभव है और विकेंद्रीकरण और मानवीय जीवन के विविध पक्षों के उचित महत्व पर आधारित है। पांचवा, कानूनी रूप के आधार पर। ऑस्टिन कानून को का एकमात्र स्रोत राज्य को मानता है और कानून को प्रभुता संपन्न राज्य का आदेश मानता है, किंतु हेनरी मैन डिकविट क्रैब आदि ने कानून के स्वरूप की मीमांसा करते हुए कहा है, राज्य न तो कानून का निर्माता है और न ही उच्च है, वह केवल उसका अन्वेषक और घोषणा करने वाला ही है। उदाहरण, चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने अपने आदेश द्वारा ऐसा निश्चित किया है, अपितु इसलिए अपराध है कि नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है। छठा, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। कुछ लेखकों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणाम स्वरूप बाहरी मानों में राज्य की प्रभुसत्ता नष्ट हो जाती है, परंतु विश्व शांति बनाए रखने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत का तय अनिवार्य आवश्यकता है। लास्की कहते हैं, असीमित एवं अनुत्तरदायी संप्रभुता का सिद्धांत मानव के हितों से मेल नहीं खाता और जिस प्रकार राजा के दैविक अधिकार समाप्त हो गए वैसे ही राज्य की प्रभुसत्ता भी समाप्त हो जाएगी। यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी सेवा होगी। राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत। साधारण भाषा में एक स्थान पर आने की प्रतिष्ठा ही बहुलवाद है। इस प्रकार राजनीतिक बहुलवाद वह मत और सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में एक प्रभुता संपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया। ये समुदाय राज्य के अधीन न होकर उसके समकक्ष होने चाहिए और इसी प्रकार समाज का संगठन प्रभुता की दृष्टि से एकात्मक न होकर संघात्मक होना चाहिए। अन्य विचारधाराओं की भांति बहुवाद के भी कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, जिसका निम्न है। पहला, राज्य केवल एक समुदाय है। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य को सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान और नैतिक संस्था के रूप में नहीं स्वीकार करते, वरन विभिन्न आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक संस्थाओं के समान ही राज्य को एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला समुदाय मानते हैं। और बहुलवाद इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि अन्य समुदाय के समक्ष ही राज्य है और राज्य के समान ही ये समुदाय भी अपने क्षेत्र में पूर्ण शक्तिशाली होते हैं। लास्की कहता है, समुदाय को अनेक प्रकार में से राज्य भी एक है और अन्य समुदाय की तुलना में वह व्यक्ति भी भक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं है। मेटलैंड राज्य भी इन्हीं समुदाय में से एक है। दूसरा, बहुलवादी और राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं कहते हैं। बहुलवादियों के अनुसार फाजवादी विचारक का कथन गलत है कि सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है और राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। बहुलवादी मैकावर लिखते हैं, राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन या समविस्तार वाला नहीं कहा जा सकता। राज्य का निर्माण तो समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया है। राज्य समाज के एक ऐसा अंग है जो उद्देश्य और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से समाज का समागामी नहीं हो सकता। तीसरा, बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास करते हैं। ऑस्टिन की असीमित संप्रभुता के विपरीत बाह्य और आंतरिक दोनों ही क्षेत्र में संप्रभुता को वो सीमित मानते हैं। आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति अपनी प्रकृति तथा नागरिक और समुदाय के अधिकारों से तथा बाह्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित होता है। बलनसली कहते हैं, राज्य सर्वसत्तावान नहीं है क्योंकि वह बाहरी क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकार से सीमित है और आंतरिक क्षेत्र में वह स्वयं अपनी प्रकृति और नागरिकों के अधिकारों से सीमित है। इस प्रकार बहुवाद आंतरिक और बाहर दोनों क्षेत्र में राज्य की निरंकुश शक्ति का विरोधी है। चौथा, बहुवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र उच्च है। दिग्विजय के अनुसार विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र उससे श्रेष्ठ और पूर्वकालिक होती है। विधि के बिना सामाजिक एकता या संगठन या मनुष्यों का एक दूसरे पर निर्भर करना संभव नहीं है। क्रैब कहते हैं, राज्य विधि का निर्माण नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। इस प्रकार डिग्विट और क्रैब जैसे बहुलवादी राजसत्ता के ऊपर विधि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। पांचवा, बहुलवाद केंद्रीकरण में विश्वास करता है, विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। बहुलवाद आदर्शवादी दर्शन की भांति केंद्रीय सत्ता में विश्वास नहीं वरन विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। इसके अनुसार स्थानीय समस्याएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और स्थानीय समस्याओं का समाधान केंद्रीयकरण के द्वारा नहीं बल्कि शक्तियों का विकेंद्रित करके किया जा सकता है। अतः बहुवादियों के विचार से राज्य को चाहिए कि केंद्रीय सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विभाजित करें। छठा, बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। एक वह निरंकुश सत्ता का खंडन करता है किंतु अराजकतावाद या समवाद की भांति राज्य के समूल अंत करने का पक्षपाती नहीं है, क्योंकि बहुवादी संघों की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देने के लिए तो तैयार है, क्योंकि राज्य के द्वारा संघों के पारस्परिक विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य किया जाएगा, किंतु वे राज्य को उस उग्र या निरंकुश रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है जिसका प्रतिपादन एकत्ववादी विचारकों द्वारा किया गया है। बहुलवादी एक ओर अराजकता, दूसरी ओर अद्वैतवाद, इन दोनों के बीच मध्य मार्ग अपनाने का प्रयत्न करता है। सातवां, बहुलवाद एक जनतात्मक विचारधारा है। वास्तव में बहुलवाद का उद्देश्य तो सर्वाधिकारी राज्य के स्थान पर एक ऐसे जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना है जिसमें शासन व्यवस्था का संगठन नीचे से ऊपर की ओर हो, पर सत्ता के अन्य संघों के समान वितरण को वे जनतंत्रात्मक प्रणाली का ही प्रतीक मानते हैं। आठवां, बहुलवादी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। बहुलवादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अनुचित और दोषपूर्ण मानते हैं तथा वे व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं क्योंकि वे जानते हैं, उनका विचार है कि कृषक के हित का ध्यान एक वकील उसके पास रहने वाला नहीं कर सकता जितना कि दूसरा कृषक। अतः व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को अपनाना बेहतर होगा। इन सब के अतिरिक्त बहुवादी व्यक्तिवाद विचारधारा से प्रेरित हैं और वह समान इच्छा के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। बहुलवाद की निम्नांकित दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है। पहला, बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता है। बहुलवाद के विरुद्ध आलोचना का सबसे प्रमुख आधार है कि इसको स्वीकार करने के पश्चात राज्य अराजकता होगी। बहुलवादी इस तत्व को भुला देते हैं कि संप्रभुता का अनेक समुदाय में विभाजित करना उसे नष्ट कर देता है, क्योंकि विभिन्न समुदाय में समन्वय और संतुलित स्थापित करने के लिए राज्य को कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत विशेष शक्ति देना अनिवार्य है। अतः यदि संप्रभुता का विभाजन कर दिया जाए तो उसका परिणाम अराजकता होगी। गिलक्राइस्ट कहते हैं, यदि बहुलवाद को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाए तो इसका अर्थ होगा समाज का विघटन और शांति और व्यवस्था के स्थान पर विभिन्न समुदाय द्वारा अपनी अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष। दूसरा, बहुलवाद कतिपय भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। कुछ मिथ्या धारणाओं पर आधारित होने के कारण बहुलवाद की आलोचना की गई है। बहुलवादित के द्वारा प्रतिवादित राजनीतिक संसद और आर्थिक संसद की सहप्रभुत्व की धारणा को भी स्वीकार कर लें तो इस स्थिति में सुधार नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित संघर्ष को हम दूर नहीं कर सकेंगे। समाज के वर्तमान संगठन में विभिन्न हितों और संस्थाओं का पारस्परिक संघर्ष नितांत स्वाभाविक है, और इसे दूर करने के लिए राज्य का होना अनिवार्य है। अतः बहुलवादियों का यह समझना असत्य है कि प्रत्येक समुदाय बिना संघर्ष के साधुवत रूप से अपने कर्तव्य को निभाता रहेगा। तीसरा, सभी समुदाय समान स्तर के नहीं है। बहुलवादी विचारकों ने सभी समुदायों को समान स्तर का मान लिया है और सभी को समान शक्ति देने की भूल की है। अतः संस्था राज्य अपने विशेष कार्यों के कारण उसकी स्थिति अन्य समुदाय से भिन्न होती है। प्रोफेसर गार्नर के शब्दों में, भिन्न श्रेणियों और वर्गों के एक दूसरे से प्रतियोगिता करने वाले समुदाय को उचित मर्यादा में रखने का कार्य करके राज्य एक महत्वपूर्ण सेवा करता है। उसके परस्पर विरोधी हितों का निपटारा करने और उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य निर्णायक कार्य करता है। चौथा, बहुलवादी प्रभुत्व के काल्पनिक और द्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण करता है। कोकर के अनुसार, इनमें किसी भी लेखक का यह दावा नहीं था कि सत्ता की अवज्ञा करना, उसको चुनौती देना, उसकी आलोचना करना अथवा उसको विरोध करना अवश्य अनैतिक, तर्कहीन, असामाजिक और अव्यवहारिक है। उसका सारांश यही है कि संप्रभुता अपने आदेश सदृश किसी अन्य शक्ति का अस्तित्व सहन नहीं कर सकती, और यह अकाट्य सच है। आशीर्वादम लिखते हैं, बहुलवादी जिस अद्वैतवादी शत्रु पर प्रहार करते हैं वह बहुत कुछ सीमा तक एक काल्पनिक जीव ही है। पांचवा, बहुलवाद अंतर्विरोध से भरा है। गियर्क ने राज्य की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए कहता है कि उसकी इच्छा संपूर्ण जनहित का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य अन्य सामाजिक संस्थाओं से अपनी स्थिति की उच्चता के कारण भिन्न है। बार्कर तथा लास्की भी मानते हैं कि समूह का संगठन राज्य द्वारा ही निर्धारित होगा। बार्कर कहते हैं, राज्य के जीवन की एक सामान्य तथा सर्वांगपूर्ण योजना के रूप में आवश्यक रूप से समुदायों के साथ अपने दूसरे समुदायों के साथ कानूनों के अपने सदस्यों के संबंधों का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। बहुलवादियों के यह कहकर आलोचना की जाती है कि वे संप्रभुता को सामने के द्वार से बाहर निकालकर पीछे के द्वार से वापस ले जाते हैं, क्योंकि फिगेस का भी कथन है कि राज्य समाजों का समाज है और उसे समन्वयत एकीकरण की एजेंसी के रूप में विशिष्ट कार्य तथा उच्च सत्ता प्राप्त है। इस प्रकार बहुलवादी विचारधारा अंतर्विरोध से पूर्ण है। और बहुवाद और कोकर लिखते हैं, यह बड़ा मनोरंजक अंतर्विरोध है। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए वे बड़े जोश के साथ प्रभुसत्ता का विरोध करते हैं और उसे राजनीतिक शब्दावली तक से निकाल देना चाहते हैं। दूसरी ओर जब वे राज्य के वास्तविक संगठन का वर्णन करते हैं तो उन्हें विवश होकर राज्य की सर्वोपरि स्थिति और प्रभुसत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। छठा, बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता। बहुलवादियों की भ्रांति है कि अन्य समुदायों पर से राज्य का नियंत्रण हटा लें तो व्यक्तित्व को अपने विकास हेतु संतुलित वातावरण उपस्थित होगा, परंतु जो लोग समुदाय की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करते हैं वे अपने हाथ में सत्ता आने के बाद अन्य व्यक्तियों का दमन किया जाएगा, अतः राजनीति में व्यवहारिक विप्लव उत्पन्न हो जाएगा। जीवन इन्हें हम चेतावनी देते हुए कहता है, आज जो व्यक्ति राज्य के निरंकुश सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं वे साधारणतः यह भूल जाते हैं कि पड़ोसियों के अत्याचार से अधिक भीषण अत्याचार कोई नहीं हो सकता। समुदाय जितना हो छोटा होगा अपने जीवन और कार्यों पर उतना ही कठोर नियंत्रण होगा। राजसंघों का संघ नहीं हो सकता। राज्य का निर्माण समुदायों से नहीं हो सकता, क्योंकि एक या तो अनेक समुदाय मनुष्य की पूर्णता को अपने में नहीं सम्मिलित कर सकता। एक आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की मांग करता है। मेरी नागरिकता एक व्यावसायिक संघ की सदस्यता से कहीं अधिक बड़ी वस्तु है। राजनीति में एक पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। मेरी आत्मा का निवास राज्य में ही है। मिस फॉलेट इस प्रकार का विचार व्यक्त करते हुए राज्य को संप्रभु शक्ति का प्रतीक मानती है और अन्य संस्थाओं से राज्य को उच्चतर स्थिति देती है। आठवां, बहुवाद देशभक्ति विरोधी है। प्रभुसत्ता तथा राज्य के महत्व को कम करने तथा अपनी विचारधारा के अंतर्राष्ट्रीय होने के कारण बहुलवाद नागरिकों में देशभक्ति की विधारणा का विरोध करती है, जो उचित और व्यवहारिक नहीं है। इस सदी के दो विश्वयुद्ध ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि देशभक्ति की भावना इस समय तक भी अजय है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय प्रेम के इंतजाल में फंसकर देशभक्ति का विरोध करना बहुलवाद की एक बड़ी भूल है। नवां, बहुवाद का कानून संबंधी विचार गलत है। बहुलवाद की आलोचना इस दृष्टि से की जाती है कि डिगबिट और क्रैव जैसे बहुलवादी दार्शनिकों का कानून संबंधी विचार असत्य है। ये कानून को राज्य से उच्च मानते हैं और इस प्रकार कानून की संप्रभुता सत्ता के अंग कहा जा सकता है। दसवां, अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर प्रभुसत्ता का विरोध उचित नहीं कहा जा सकता है। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय आचार विचार और कानून का आदर करना चाहिए, लेकिन वैधानिक दृष्टि से राज्य इन सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि जनमत अथवा नैतिकता के दबाव से राज्य उसका पालन करता है तो इससे उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाती है। वास्तविकता यह है कि सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य की बाहरी संप्रभुता पूर्ण है, यदि व्यवहार में उस पर कुछ प्रतिबंध है। बहुलवाद का महत्व, राजसत्ता के खंडित स्वरूप तथा संघों के महत्व का एक अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करने पर भी बहुलवादी दर्शन में सत्य का बहुत कुछ अंश है। गैटल के शब्दों में, बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता तथा ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध एक सामूहिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। बहुलवाद और राजनीतिक संघों के बढ़ते हुए महत्व पर जोर देता है। इन समुदायों के उचित कार्यक्षेत्र में राज के हस्तक्षेप के प्रति सचेत करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज के द्वारा न केवल इन समुदायों को मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए वरन इन समुदायों को अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक सीमा तक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान समय में मानव जीवन के बहिर्मुखी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए बहुलवादी के इस विचार को प्रशंसनीय कहा जा सकता है। उचित रूप से बहुलवाद के इस विचार को स्वीकार कर लेने से न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता मिलेगी वरन राज्य की कार्य क्षमता में भी आवश्यक रूप से वृद्धि होगी। मिस फॉलेट बहुलवाद के बारे में कहती है, बहुलवादी वर्तमान राज्य की सर्वोच्चता के अधिकार को नष्ट करते हैं। वे संघ के महत्वों को स्वीकार करते हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करते वो अपने कार्यक्षेत्र के संबंध में स्वायत्ता देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। वे स्थानीय जीवन को पुनर्स्थापित करने के पक्ष में हैं। निष्कर्ष, संप्रभुता राज के विरुद्ध एक सामयिक प्रतिक्रिया होते हुए भी बहुलवादी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरियम और बर्न्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स इन रिसेंट टाइम्स में लिखा है, बहुलवादियों के विरोध के बावजूद न तो राज्य के संप्रभुता के सिद्धांत का त्याग किया गया है और न ही इसका त्याग किया जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टर आशीर्वादम ने बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है, एक ऐसे सिद्धांत के रूप में जो संप्रभुता के परंपरागत विचारों की ज्यादतियों को ठीक करता है और जिसकी कमियों को पूरा करता है, बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पर जब वह संप्रभुता के सिद्धांत को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है तब यदि व्यर्थ नहीं तो खतरनाक अवश्य हो जाता है। वास्तव में बहुलवादी आलोचना राज्य के समन्वयकारी रूप की आलोचना होने की अपेक्षा राज्य के वर्तमान सामाजिक ढांचे की आलोचना अधिक है। इस स्थिति में जॉर्ज सेवाइन ने इन शब्दों का प्रयोग उचित है, मैं यथासंभव एकत्ववादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ किंतु जहाँ आवश्यक हो बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, संप्रभुता की परिभाषा कीजिए और इसके मुख्य लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरा, राज्य की संप्रभुता संबंधी ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तीसरा, वकीलों द्वारा माने गए संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु है जिसका सम्मुख कानूनी संप्रभु को नतमस्तक होना पड़ता है। डाइसी के इस कथन की व्याख्या तथा विवेचना कीजिए। चौथा, बहुलवाद के सिद्धांत की व्याख्या तथा विवेचना कीजिए। पांचवा, यदि संप्रभुता संपन्नता की समस्त धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए चिरस्थायी लाभकारी होगा। हेरार्ड लास्की के उपयुक्त कथन को दृष्टि में रखते हुए संप्रभुता के सिद्धांत तथा बहुलवादियों के आरोपों की समीक्षा कीजिए। छठा, निम्नांकित में भेद कीजिए, ए वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता, बी विधिता और यथार्थ संप्रभुता, और सी वास्तविक और लोक प्रभुता।